ரமோ அரிஹந்தாணம் ரமோ சித்தாணம் ரமோ வாயை ரமோ வஜ்ராயாணம் ரமோ லோயே சவ்யசாஹுனம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதிமோக மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜெயினி தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயினம் ஜயது சாசனம் ஜெயினம் ஜயது சாசனம் நம ஸ்ரீ வர்தமானாய் நிருதூத கலிலாத்மனே சாலோகானாம் த்ரிலோகானாம் யத் வித்யா தர்பணாயதி தீசியாமி சமீசீனம் தர்மம் கர்ம நிவர்ஹிணம் சம்சாரி துக்கிதஹ சத்வான் யோதரத்துத்திமே சுகி சத்ருஷ்டி ஞான வ்ரத்தானி தர்மம் தர்மேஸ்வராவிதோ யதீய ப்ரத்யனீகானி பவந்தி பவபத்ததி.
சமாதி மரண கி சர்ச்சா ஹை. पेज नंबर है
52. भवन में जीव रे घूमे चुका कण कण को जी भर भर देखा மிருக சம மிருக திருஷ்ணா கே பீச்சே முஜிகோ நா மீலி சுக கீ ரேகா முஜிகோ நா மீலி சுக கீ ரே.
450 பேஜ் பர் காய சல்லேக்னா கசாய சல்லேக்னா யானி ஜோ தேஹ கா விசர்ஜன் சூட்னா ஹோதா ஹை इसी जगत में मरण कहते हैं और ज्ञानी जन इसे मृत्यु महोत्सव कहते हैं. मृत्यु न जीव की होती है और न शरीर की होती है. फिर महोत्सव किसका है, किससे छूटने का है. मोही को दुख क्यों होता है, क्योंकि इसे आत्मा छूटी है इसका दुख नहीं लगता. देह छूटेगी इसका दुख तो लगता है, पर आत्मा छूटी हुई है इसका दुख लगता नहीं, विचार में भी नहीं आता. मैं मर जाऊंगा यानी मेरी सत्ता शरीर है, ये मर जाएगी, सब कुछ नाश हो जाएगा यानी संयोग छूट जाएगा. और भगवान क्या पढ़ाते हैं, जहां देह अपनी नहीं, एक परमाणु भी अपना नहीं. तुम पूरे बॉम्बे को अपना मानो, पर एक परमाणु भी जीव का नहीं है. एक भाव के दुख का विचार करने वाला आजीव का में लगता है, दो भाव के दुख का विचार करने वाला पूजा पाठ में लगता है, और अनंत भाव के दुख का विचार करने वाला मोह के त्याग धर्म में लगता है. तीन व्यक्ति है, कौन कौन से? एक भाव का विचार करेगा, अरे भैया कुछ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जीवन चलेगा. तो कुछ धंधे पानी के विचार चलते घर गृहस्थी में, पढ़ो कुछ काम करो, नौकरी करो या धंधा करो, ये सब एक एक भाव के विचार वाले. और दो भाव यानी मरना पड़ेगा अगले भाव में, क्या क्या किया तुमने, तो पूजा पाठ करते हो कि नहीं, तो थोड़ा बहुत खसकता है. उमंदर आने लगता है, जाप देने लगता, पूजा करने लगता है, पर उसे ये नहीं लगता कि ये लंबी संतति चल रही है, भगवान्तर ऐसे बहुत बीत गए, फिर जन्मना फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना, और फिर जन्म मरण न आत्मा का है और न देह का है, परंतु कष्ट इतना है कि जिभ्य में ताकत नहीं है, केवली में ताकत नहीं है कि आपके दुख बता सके, वो जीव खुद भोगता। फिर से वो जीव न जन्मता है और न मरता है। दौलत राम जी लिखा कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत आपको नासमा, शरीर की उपज को अपनी उपज जानता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है। तो शरीर तो नया मिलेगा और फिर छूटेगा, तो जब देह मिलता है गर्भ में आता है तो जन्म का कष्ट है कि गर्भ का कष्ट है कि किस बात का कष्ट है, ये पूछ रही जिनवाणी। तो कहते हैं कि जीव को पर द्रव्य का कष्ट नहीं होता है, इसे मोह का कष्ट होता है। मैं जन्मा मैं मरा, देह में एकत्र है तो जितना एकत्र जितनी ममता उतना दुख, और जितनी निर्ममता निष्प्रयता निरपेक्षता निकांक्षितता निसंकता उतनी सुख। अभी एक कथा अपनी 450 पेज पर कसाय संलेखना की करना, ये जगत के जीव जीनियों की ये मृत्यु महोत्सव को समझ नहीं पाते, इसे आत्महत्या कहते। इसमें लिखा कि ये जो संथारा है, समाधि मरण है, मृत्यु महोत्सव है, ये आत्महत्या इसलिए नहीं है कि आत्महत्याएं कसाय से की जाती, और इस समाधि मरण महोत्सव कसाय के अभाव के लिए किया जाता। जब देह का भोजन आदि से पोषण नहीं होता, शोषण होने लगता है, तब उसे देह छोड़ने का कसाय छोड़ने का जो मन बनता है उसे महोत्सव कहते। तो आत्महत्या नहीं है ऐसा दिमाग में बिठाल के रखना। दूसरा तैयारी रखना कि देह के विसर्जन का काल आए तो घबराना नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी द्रव्य नहीं मरता, ये तो बहुत दिन से इसके साथ रहते रहते लगाव हो जाता है, ऐसा लगता है अब हम मर जाएंगे। न देह मरती है और न आत्मा मरती। तो आज कसाय संलेखना 450 पेज पर है, गजब की तरह पद्धति से लिखा। जैसे तपश्चरण से कसकाया को क्रस किया जाता है, वैसे ही राग देश मोहादि कसायों को भी साथ साथ ही क्रस करना, इसका नाम कसाय संलेखना। फिर से अपन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते और ज्ञानी जन अपनी इच्छाओं का अभाव करते, तो इच्छा की पूर्ति में कुटेव पड़ती है, वासनाएं पक्की होती फिर वो रुलाती हैं, और ज्ञानी जन क्या करते हैं अपने तत्व ज्ञान से उन इच्छाओं का अभाव करते। ये चतुराई है, हमने जो चाहा वैसा हो जाए ये तो कुटे हुए, और जैसा हो रहा है वैसा उसके ज्ञाता रहना, ये चतुराई। जो होगा यदि हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो स्वर्ग में ज्ञाता रहेंगे, नरक में पहुंचेंगे तो नरक में ज्ञाता रहेंगे, ऐसा तत्व ज्ञान उसे स्थितियां बदलता नहीं, उसे परिस्थितियां बदलने में अपनी शक्ति नहीं लगाता, मन स्थिति बदलने में लगाता। ये देखो तपश्चरण यानी इच्छाओं का निरोध, इसमें जीव अपनी इच्छाओं का निरोध करके कसायों को क्रस्त करता। रोग क्या है जीव को, यही तो है कसाय की पूर्ति। सब जीव दुखी है, अभी एक छोटा बच्चा बैठा है उसे एक विकल्प आ जाए, हमें तो मोबाइल चाहिए, हमें तो घूमना चाहिए, अब उसे कितनी भी यहां अनुकूलता हो एसी में बैठा लो पर शांति नहीं लगी, उसे उस इच्छा की पूर्ति में आनंद आएगा, भले ही आनंद नहीं हो थोड़ी देर में थक जाए। ये कह रहे हैं कि ये तत्व ज्ञान जगाओ जिससे हमारी कसाएं छिलें घटे कम हो, अपन इनकी पूर्ति में नहीं लगे, इनके अभाव की प्लानिंग बनाओ। क्योंकि जो भी इच्छा की पूर्ति का व्यवसाय करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, शरीर को मिलेगा भी तो शरीर सुखी नहीं होगा। फिर से पढ़ते देखो, इसमें आया है कसाय संलेखना। संलेखना क्या कहलाता है बीबी? सत लेखन। सत क्या कहलाता है? अस्तित्व, सत्ता, अपनी सत्ता है। ये आत्मा की सत्ता अनादि अनंत है, ये शाश्वत है, ये नहीं मरता कभी। तो सत्ता को देखो और फिर दूसरा लेखन। तो लेखन का अर्थ क्या कहलाता है? छीलना, क्रश करना, कम करना। किसे कम करना? कसाय को और काया को। कब करना कम? जब अपने धर्म की रक्षा ना हो रही हो तब। काया को भी छोड़ने के लिए कब परमिशन दी? जब अपने धर्म का रक्षण ना हो रहा हो तब काया को छोड़ने के लिए प्लानिंग बना। नहीं तो काया की रक्षा धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। तो पहले लिखा कि काया को क्रस किया जाता है तपश्चरण से। कब? जब हमारा शरीर हमारी धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा तब, नहीं तो आत्महत्या का पाप लगे। वैसे ही अब ये पाठ है कसाय संलेखना, तो वैसे ही राग द्वेष मोहादि कसायों को भी साथ ही साथ क्रस करना। अपने परिणाम देखो कहाँ भागते, किससे एकत्र। खेमजी भाई थे ना, तो उन्होंने आखिरी समय अपने लड़के को बुलाया, बेटा समय सार सुनाओ, गुरुदेव ने जीवन भर हमें ये पढ़ाया है, हम देह छूटने वाली आखिरी समय, हमें समय सार सुनाओ। ऐसा उन्होंने लड़के से कहा। लड़का ले आया समय से, अब खोला, अरे रे अब समय सार पढ़ने का समय नहीं है, समय सार देखने का समय। सुनना बंद करवा के आंख बंद कर ली। मैं तो समय सार हूं, पुस्तक में कहां देख रहा हूं। और ऐसा तत्व विचार से देह छूट गई। देखो पहले से ही देह को अपना मानना छोड़ोगे तो फिर देह शांति से छूट होंगे। ये पहले से सोचा कि कैसे मरेंगे अपन, बहुत मुश्किल से प्राण निकलेंगे, ये जल्दी निकल जाए, ये भगवान अच्छे से और जिए, कुछ ना कुछ जो निदान बांधोगे इसके खोटे फल आए, जल्दी मर जाए तो ऐसा गंदा रोग आएगा कि जल्दी मर जाओगे और भगवान का नाम भी नहीं ले, भेद विज्ञान नहीं कर पा, हार्ट अटैक हो जाए, हमें ज्यादा ना तड़पना पड़े। ये सब मूर्खता की निशानी। अरे जो स्थिति होगी हम उसके ज्ञाता रहेंगे, ताकत बढ़ाओ। अपन को भागना नहीं है मौत से। जब आप भागते हो तो मृत्यु तुम्हें खोजती है, और जब तुम मृत्यु को खोजते हो तो मृत्यु तुमसे भागती। आप अपना अस्तित्व ज्ञाता रखो, आत्मा रखो, सत्तावान पदार्थ हो, कुछ बिगड़ता नहीं है, अपने को जीव देखो। भगवान ने तुम्हें अनादि अनंत कहा, आप भी उसका विश्वास करो, देखो मरण नहीं बिगड़ेगा। और नहीं तो ये जीव को देह तो छोड़ना पड़ेगा, और संकलेश भाव से छोड़ेगा तो, संकलेश भाव से छोड़ेगा तो क्या होगा? अति संकलेश भाव ते मरो, फिर कहाँ गया बाबूजी? घोर स्वभ्र सागर में पड़ो। इसमें अपन ने कितने लोगों के नाम सुने, सुकौशल, सुकमाल, वृषभ सेन, श्री दत्त, श्रेणिक सुत, कितने लोग चले गए, 700 मणि, 500 मणि, 32 मणि। कोई कंसेशन है कि मुनि हो गए तो अब तुम्हारे ऊपर ये सब घटना नहीं घटे? परंतु कोई भागे नहीं, मुनि हो गए और फिर अवसर हुआ तो उसमें भेद विज्ञान किया, 500 मुनिराज को पेल दिया। एक दंडक वन का किस्सा है, राजा था दंडक वन में, वहां उसकी पत्नी धार्मिक थी, राजा भी जैन धर्म का अनुयायी था, और उसे जो बालक नाम का मंत्री था वो जैन धर्म से चढ़ता था, तो उसने कोशिश की कि राजा जैनी हो रहा है और ये मुनिराजों को समर्पित हो रहा है, इसकी नजर जैन धर्म से फिरवाना चाहिए, हटवाना चाहिए, कोई घटना ऐसी घटे जिससे इसका चित्त पलट जाए जैन धर्म। तो उसने क्या किया, अपने दिगंबर मुनिराज होते ना, इनको निंदित करने के लिए एक भाण को पकड़ा और उसे पैसा दी और रानी के कमरे में भेज दिया और हाव भाव चेष्टाएं करना है और हम यहां से राजा को भेजेंगे। ऐसा टाइम मिलाया कि तुम इतने बजे रानी के पास जाना, हम इतने बजे राजा को भेजेंगे कि देखो आप जैनी मुनि को मानते, देखो तुम्हारी रानी को छेड़। और राजा अंधा हो गया, उसने देखा नहीं, आते ही आर्डर दिया कि जितने भी मुनि नगर में मिले सबको घानी में पिलवा दिया। कितने मुनि, 500 मुनिराजों को घानी में पिलवाया, उसमें से बहुत से तो सिद्ध बन गए। कैसा साहस रहा होगा, ऐसा सिर डालते हैं और पत्थर चलाते हैं, अंग अंग सब छिद गए, फिर भी वे सिद्ध पद को प्राप्त कर रहे। तो एक खंडक नाम के मुनि थे और वो बीच में मिले उस बालक नाम के मंत्री, और उस मंत्री ने मुनिराज से बहस की, शास्त्रार्थ किया, और खंडक मुनि बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, वो चिढ़ गया और उपसर करने आया, और इस तरह का उपसर किया उसने, नाम था बालक मंत्री का, और उसने राजा का कान भरा, दिखाया कि देखो नग्न होकर के आप, वो नग्न मुनि आपकी रानी के साथ क्या हाव भाव कर। तो वो भरे व्यक्ति जो बाहर था खंडक मुनि, उसको ये पता चला कि 500 मुनिराज गानी में फेल दिए, तो इतना ज्यादा उसे दुख हुआ और आर्थ परिणाम हुए कि संकलेश भाव से पुतला निकला और पूरे नगर को साफ कर। तो 500 मुनिराज मरे और हजारों लाखों जीव मरे, इतना बुरा पाप होता है। और कितने दिन तक वहां घास नहीं होगी, अनाज नहीं हुआ, पहाड़ ऐसा जैसे कोई जल गया हो, जंगल जल जैसे, वो नगर ऐसा जैसे राख हो, जल गया हो। और कब उसमें थोड़ी परिवर्तन आया, धीरे धीरे लोगों की विशुद्धि बढ़ी, जब सीता और राम उस दंडक वन में पहुंचे थे, तब एक रिद्धिदारी मुनिराज वहां पर आए और उनके सीता के माध्यम से आहार हुए, और उसी समय वो राजा जिसने 500 मुनिराज को घानी में पेला था, वो गिद्ध पक्षी हुआ था जटायु, और उसी मुनिराज को देखते ही अपने पूर्वों का स्मरण आया, शरीर में कितना पापी हूं, मैंने इनसी पवित्र मूर्तियों को नहीं सराहा, इनका आदर नहीं किया, मैंने मुनि भगवंतों पर कैसा अवसर किया, बहुत पापी, ऐसे परिणाम भिगोए और उनके चरणों में जहां उनके पैर धुले थे तो उस पानी में ऐसा लूटता रहा और उनके पैर पकड़ लिए। तो सीता जी कहते हैं कि कैसा दुष्ट पक्षी है ये, मुनिराज आहार के लिए आए हैं, यह आहार हो गया उसके बाद ये देव छोड़ नहीं रहा। और मुनिराज बोले कि सीते तुझे पता है ये सम्यक दृष्टि भी हो गया है और श्रावक भी बन गया, उसे उपदेश दिया उनने और उसे सब जाति स्मरण में याद आ गया, बात समझ में आ गई, तत्व ज्ञान हो गया, कौन सा जानवर था, जटायु गिद्ध पक्षी जो मांस खाता ऊपर रहता और उसे ऊपर कितने ऊपर रहता और नीचे का मांस दिखता, यहां मरा डाला, ऐसा जटायु सम्यक दृष्टि संयमी मुनिराज की शरण में आया और सीता को मुनिराज ने सौंपा कि तुझे ये श्रावक सौंप के जा रहे हैं, इसे इसकी रक्षा करना है। श्रावक का मुनिराज ने उसका, पर लंबी कथा, रावण ने सीता को उठाया, तब जटायु ने देखा तो चोंच मारना चालू की, वो अपनी कितनी ताकत लगाते, तो चोंच मारने पर बार बार रावण परेशान हो रहा था, तो उसने जोर से हाथ मारा कि नीचे गिरा और तड़पता रहा। उसी समय रत्नजटी नाम का कोई विद्याधर आया, किसी ने नहीं, राम या लक्ष्मण वहीं से निकले और उन्होंने श्री रमुकार मन सुनाया, समाधि मरण हुआ और देव की पर्याय में हुआ। ये जटाई भी देव हुआ और कृतांत वक्र सेनापति भी देव की पर्याय में। और जब राम लक्ष्मण के वियोग में अर्धमूर्छित जैसे हो गए थे 6 महीने के लिए, तभी दोनों देव आखिरी में संबोधने के लिए आए। जब दीक्षा लेने जा रहा था कृतांत वक्त, तो राम ने रोका कि क्या करते हो तुम, कैसे लोगी दीक्षा, तुमसे सहन कैसे होगी, तुम तो यहाँ के कमांडर हो, हेड हो, तुम किसी के अधिकार में रहे नहीं, अनुशासन में रहे नहीं, और तुमने सबसे ऊंचा पद संभाला है, तुमसे जिनेश्वरी दीक्षा धारण करते नहीं बने। ऐसा राम बोले, चाहे एक सम्यक दृष्टि। तो कृतांत वक्त बोला कि महाराज, जब सबसे कठिन आपसे स्नेह तोड़ना था और वो भी स्नेह जब मेरा टूट गया, तो अब और क्या रह गया है जिससे मैं घर में रह सकूं और संसार बढ़ा सकूं, अब मुझे आप आज्ञा दो और मैं जिनेश्वरी दीक्षा धारण। और वो देव हुआ और देव होने पर इस समय संबोधन आए दोनों। देखो, सीता नहीं मिली तो कोई देव नहीं आए, दोनों देव थे इन्हीं के अंडर में रहने वाले, कृतांत वक्त और जटायु, और कोई देव नहीं आए। राम को यदि हैरान होना पड़ा तो देखो कितने महीने, यानी 11 दिन बाद तो सीता की खबर, सीता को खबर मिली थी कि राम सुरक्षित हैं और राम के पास हनुमान ने जाके बताया था कि सीता अच्छी से रह रही है अशोक वाटिका में, आप चिंता नहीं कर, और सीता को राम का पता बताया और उन्होंने तब जल लिया था 11 दिन बाद। और 11 महीने बाद ये लड़ाई लड़ाई सब हुई है, कितना बड़ा संघर्ष है। हम ये कह रहे हैं कि वो देव कहाँ गए थे जब राम इतने चक्कर लगा रहे थे, कोई है किसी का सहाय, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपका पुण्य का उदय हो तो सामने कोई खड़ा हो जाता, यदि पुण्य का उदय नहीं हो तो एक भी व्यक्ति तुम्हें एक गिलास पानी नहीं दे सकता, कोई नहीं पूछता किसी को, आपका ही पुण्य आपके सामने आ जाता है। और ये जीव समझता है जैसे मैंने ये कमाया, मैंने ये किया, मैंने ये कर लिया, पूरा व्यवस्थित है पुद्गल का परणमन आना जाना और इस जीव के उदयानी निमित्त बनना। तो अभी कह रहे हैं कि जैसे काया गलेगी धीरे धीरे बुढ़ापे में छूटने के समय, ऐसे अपना मन बनाओ कि तुम्हारा मुंह गल रहा है कि नहीं, क्या ये जीव को बुढ़ापे में मुंह और बढ़ता, जिभ्या इंद्रिय और चलती, और ज्यादा टीवी देखने चालू कर देता, और ज्यादा बोलना चालू कर देता, सब शक्तियां नष्ट करता, क्योंकि अभी खाली होके जाना ना, कम से कम खाओ और गम खाओ यदि तुम्हें सुखी रहना है। बुढ़ापे में ज्यादा शरीर चलता नहीं तो क्या करना चाहिए, भोजन भी कम कर दो और गम भी खाना चालू कर दो, यानी जरा जरा सी बातों पे अपने माथा को खराब नहीं करो, हो गया होगा कोई बड़ी बात नहीं, बस ज्ञाता रहने की आदत डाल। एक प्रकरण और आगे याद, पद्म पुराण का अष्टांग का पर्व थे ऐसे, और दशरथ ने भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक करके और चारों रानियों के लिए अलग अलग साधनों से अभिषेक भगवान का भेजा, कौशल्या को, सुमित्रा को, केकई को, सुप्रभा को, सबको ये दे देना। अब सुप्रभा के पास जो गंधोदक गया वो एक वृद्ध व्यक्ति ले गया, और तीन व्यक्ति, तीन के पास गंधोदक स्वस्थ व्यक्ति ले गए, जल्दी मिल गया। अब वो प्रसन्न थे, कितना अच्छा पर्व है, हमें राजा कितने चाहते हैं, और उन्होंने गंधोदक को वंदना की और खुश थे। अभी वहीं बैठी सुप्रभा ये इतनी दुखी हुई कि वहां से उठ के आई, बिस्तर पर सो गई और कर्मचारी को बुलाया कि जाओ ये 20 रुपये ले जाओ और विष खरीद के लाओ, कि मालिक क्या जरूरत आ गई विष की, कि तुम बहस नहीं करो, जाओ पहले विष लेके आओ। तो वो विष लेके आ गया, जहर, विष यानी जहर, तो खड़ा था, और इतने में दशरथ लौट के मंदिर जी से आए और देखा कि तीन रानियां तो बैठी हैं, चौथी रानी नहीं दिख रही। तो उनको एक कौतूहल सा जागा कि ये क्यों नहीं है, तो गए उनके पास और जाके देखा तो ये पड़ी हुई है, चेहरा उतर गया है, सांसें ले रही हैं। और वो आया इतनी देर में कर्मचारी कि मालकिन ये जहर की पुड़िया। और दशरथ जी ने सुन ली, खाई के लिए जहर लाया कि मालकिन ने मंगाया था। क्यों भाई सब जहर की क्या जरूरत, अरे मेरी कोई कीमत नहीं है, सब बहु सब रानियों को आपने समय पे गंधोदक भेजा और मेरे पास अभी तक गंधोदक नहीं आया। अब मैं समझ गई मेरी उपेक्षा कितनी हो रही, देखो अज्ञान क्या तकलीफ देता। अब गंधोदक लेट हो गए तो इसमें भी जीव के परिणाम बिगड़ा। इतनी दुखी है, जहर खाने की तैयारी कर रही, एक अच्छी घर की। इतने में वृद्ध व्यक्ति खोजा, जिसको गंधोदक दिया था वो सामने खड़ा, उसी इतना डांटा, क्यों रे तुझे मौत नहीं आई, इतना टाइम लगाया, रानी ये जहर खा के मर रही थी। अब उसने क्या कहा, उसने बैराग आता ये पढ़ाया जो आज मोह का प्रकट। वो कहता है मालिक आपका नमक खाता हूं इसलिए आपकी गुलामी कर रहा हूं, जिंदगी भर आप ही की शरण में रहा, कहां चला जाऊं, आपकी नौकरी सेवा छोड़ी नहीं जाती है, पर मेरा ये वृद्ध शरीर अब चलता नहीं, मैं धीरे धीरे यहां पाया हूं, मैं क्या करूं मेरी शक्ति नहीं देगी, पर आपकी सेवा छोड़ी भी नहीं जाती। अब बताओ ये शब्द जब बोले होंगे तो दशरथ को क्या लगा होगा, उस सुप्रभा को क्या लगा? अब उन्हें जो लगा हो सो लगा हो, अपन को क्या लग रहा अपन सोचते कभी कि अपनी क्या दशा आएगी। एक वृद्ध व्यक्ति लेट आया, इसने में जहर का काम चालू हो, ये इतना जीव अज्ञानी है, मोही है कि ऐसा उल्टा उल्टा सोचता। इसलिए समझा रहे हैं कि भाई साहब मोह घटाओ, तत्व विचार करो, नहीं तो ये मौत आ जाएगी सामने। अरे लाख दस लाख करोड़ों भी चले जाएं तो हमारा क्या गया, यहीं मिले थे यहीं चले गए, हम तो जैसे आए थे चले जाएंगे, हमारा क्या है इसमें। इतनी ताकत यदि आपने नई उपार्जन की तो आपके गली गली में कष्ट आए। बहुत बड़ा संसार है ये, जो अपने शांतिनाथ भगवान का यहाँ पर पदार्पण हुआ ना, तो ये श्री सेन राजा की पर्याय में थे 12 भाव पहले। क्या नाम था, श्री सेन राजा, इनकी 2 रानियां थी और दोनों के 2 बेटे थे और दोनों बेटे नौकरानी की लड़की से प्रेम करना चाहते थे, शादी करवा पाओ। तो पापा ने कहा कि मूरखचंद तुम क्षत्रिय हो, तुम राजा के पुत्र हो और तुम कर्मचारिणी से नौकरानी से शादी करना चाहते, हमें शर्म नहीं लगी। पापा जो कुछ हो हमें तो ये लड़की अच्छी लगती। अब उन्हें लगा कि ये क्षुद्र पर्याय आई है कोई, ये हमारी बेइज्जती कराने के लिए, इससे तो अच्छा जहर खा के मर जाए। और उन्होंने हीरा को चाटा और आत्मघात कर लिया, प्राण दे दिए। और 12 भाव बाद वो शांतिनाथ बने थे श्री से। और जो उनके लड़के थे उनको जब ये पता चला कि हमारे पिताजी हमारी इन हरकतों से प्राण दे के चले गए हैं, हमारी कुचेष्टा ने उनके प्राण लिए हैं, अब हमें संबंध ही नहीं करना, न नौकरानी से, न महारानी से, न राजरानी से, कोई उलझना नहीं। और दोनों लड़कों ने दीक्षा ली और उसी भाव में केवल ज्ञान ले ली। किस भाव में, उसी भाव में केवल ज्ञान ले लिया। और पिताजी कितने लेट हो गए, 12 वर्ष। काय के कारण से लेट हुई, ये मोह का स्वरूप, मेरे बेटे और बिगड़ रहे हैं। अरे काय के बेटे और काय का बाप, ये तो जी स्वतंत्र है, अपनी आगे चलती क्या बच्चों पर, बच्चियों आजकल के बच्चे बच्चे ऐसे नहीं है जैसे रामचंद्र थे। उनको रामचंद्र को जरा पता चला कि मेरे पिता ने भरत को राज देना मंजूर किया है, तो तत्काल वे बिना पिता की आज्ञा लिए सवेरे अपने निकल पड़े, काय के बल से निकल पड़े। मोह नहीं था, अज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान था, कुछ सीता जी बताओ कौन सी अटैची लेके निकली होगी महावीर भाई, वीआईपी के एरिस्टोक्रेट, कुछ एटीएम कार्ड लिया हुआ कि नहीं, सोना थोड़ी ज्यादा पहन लिया हुआ कि नहीं, ऐसी खड़ी थी और ऐसी निकल गई। और हक नहीं मांगा कि आप भरत को राज क्यों दी थी। ये तत्व ज्ञान बहुत शांति देगा। यदि ये ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकते। जहां रहोगे वो डिमांड आपकी बनी रहेगी। तो ये कह रहे इच्छा घटाने का उपाय करना है, क्रस करना व कसाय संलेखना। बिना कसायों की संलेखना किए काय संलेखना व्यर्थ। यानी शरीर सुखा दिया और मुंह नहीं सुखाया तो शरीर फिर मिलेगा। काय का क्रसपना यानी सूखना तो रोगी के, दरिद्री के, पराधीनता से, मिथ्या दृष्टि के भी होता है। देह को क्रस करने के साथ ही साथ राग देश मोहादि को क्रस करके, इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके, देह के मरण में कुटुंब परिग्रहादि समस्त पर द्रव्यों से ममता छोड़कर परम वीतरागता से संयम सहित मरण होना, इसका नाम क्या है? ये कसाय सर्व। यानी कितना महान जैन दर्शन है। ये मरना नहीं सिखा रहा, मरने समय कसायों को मारो, कसायों को गलाओ, क्योंकि कसाय यानी मुंह से फिर भाव मिलेंगे, फिर भाव मिलेंगे। शरीर तो देखो सबका छूटता है, उस छूटने से दूसरा शरीर नहीं मिलता, पर ममत्व रहता है तो फिर दूसरा शरीर मिल जाता। देखो तीर्थंकर का देह छूटता तो उस देह के छूटने को मरण नहीं कहते, क्या कहते? निर्वाण कहते। और संसारी जीव के देह छूटता है उसे मरण क्यों कहते? अनु एक का देह छूटना मरण है और एक का देह छूटना निर्वाण है। अरविंद भाई एक का देह छूटना निर्वाण क्यों? क्योंकि अब कभी इन्हें देह नहीं मिलेगा। और ये मरण क्यों है? कि इसके बाद इनकी बुकिंग है कि अब इस देह से निकले और उस देह में फंसेंगे। तो अपन को अच्छी देह मिलेगी तो ये पुरानी देह छोड़ना के बता विवेक की मम्मी, पुरानी देह जीर्ण हो रही, सब दांत अपने खराब हो रहे हैं, किडनी फेल हो रही है, लीवर भी अच्छा नहीं हो रहा काम, आम पाचन भी नहीं हो रहा, तो इस शरीर को छोड़ के जाना है कि नहीं? जाना है। कब? अपन तो छोड़ना चाहते नहीं, अब आप कह रहे हैं तो हम बताओ क्या करें। तो ऐसी देह की दशा। अब जो जीव को ऐसा लगे कि ऐसी जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया, देह की रचना है, अब इसे तो छोड़ना चाहिए और अगले पर्याय में तो अच्छी देह मिलेगी, पर इस व्यक्ति का समाधि मरनी होगी। जिसे ये में दिखे कि अब तो अगली देह मिलेगी अच्छी वाली, तो इस व्यक्ति का समाधि मरण बिगड़ गया, क्योंकि इसे क्या याद आया? देह तो याद आई, और बुलाना किसे था? देह को बुलाना था। तो ये वो कह रहे हैं कि मुंह गलाओ, नहीं तो ये शरीर तो छूट जाएगा और फिर शरीर मिलेगा। एक मुनिराज की कथा में आया था, इसी में जो मुनिराज है ना, बहुत से मुनियों के, तो एक मुनिराज की कथा में आया, धन्य मुनि, उनमें आया अशोक नाम का राजा, एक सोम शर्मा नाम के व्यक्ति ने, उस गांव के सोम शर्मा नाम के व्यक्ति ने, गरीब था ब्राह्मण, और धनदत्त नाम के व्यक्ति से पैसे ले लिए। उसके दो लड़के थे गरीब व्यक्ति के, और इसे कालांतर में मुनिराज मिले तो ऐसा वैराग का रस चढ़ा, इतने विरक्ति आई कि ऐसा मरण होता है, ऐसे गर्भ में आना पड़ता, ये हमसे नहीं होगा इससे। तो उसने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और पैसा चुका नहीं पाए, बिना पैसा चुकाए दीक्षा ले ली। अब उस समय विरक्ति बहुत थी, याद भी नहीं आया कि किसी का कुछ लेना, और घूम के कई वर्षों बाद अपने नगर में फिर आए, और उस व्यक्ति ने जिसने पैसे दिए थे उसने इनकी हाथ पकड़ ली, कि मिस्टर तुम कपड़ा उतार दो चाहे महाराज जी बन जाओ, हमारी पहली पैसे रखो। तुम्हारी दोनों बेटी कंगाल हो गए हैं, गरीबी पे जीवन चल रहा है, उनकी पास कोई व्यवस्था नहीं, और हमने पैसे दिए तो हम तो लेके रहेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे। ऐसा कह के धमका के धमकी दे के घर चला गया। और वो अपने संघ में अपने आचार्य के पास गए कि महाराज जी वो तो ऐसी बातें करती, हम पैसा कहाँ से देंगे, हम तो दिगंबर मुनि। तो वो कहते चाहे तुम अपना धर्म बेचो पर हमें पैसे चाहिए। तो मुनिराज बोली आचार्य परमेश जी के तुम धर्म बेच देना और उसका कर्ज चुकाओ, धर्म बेच दो। ऐसा उन्होंने कहा तो धर्म कैसे बिकेगा, कि ये हमें नहीं मालूम, पर तुम मन बनाओ क्योंकि तुम्हारे पास संपत्ति कौन सी है, धन की, और कोई संपत्ति तो है नहीं, तो तुम धर्म बेचो और क्या करोगे, और उसके पैसे चुकाओ। स्मशान में हो गए और बैराग बढ़ गया, किसी से बोलने का भाव नहीं, जंगल में स्मशान में अपने ध्यान कर रहे और बोले जोर से मुझे धर्म बेचना। तो एक देवी वहीं पर आई और उसने पूछा कि मुनिराज आप क्या कह रहे हैं, धर्म बेचना क्यों, क्योंकि वो पहले कर्ज लिया था, वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पैसे वापस, तो आपके पास कौन सा धर्म है, कि हमारे पास रत्नात्र धर्म है, हमारे पास क्षमादि 10 लक्षण धर्म है, हमारे पास उत्तम वितरागता है, संयम है, शांति है, निराकुलता है, अद्भुत धर्म है। ऐसा बोले जोर से, अपूर्व धर्म है, अद्भुत शांति है। देवी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने पवित्र ऐसा आनंद भोगने वाले और लू इन्हें भी सताते, कि महाराज जी आप धर्म बेच रहे हो पर लेगा कौन, किसकी ताकत है आपके ऐसे उत्कृष्ट धर्म लेने की, तो आप महाराज जी ये काम हमारे जुम्मे सौंप दो, और ये आपने जो केस लॉन्च किए थे सबसे पहली बार के, और वो केस लॉन्च जिस जगह डाले हैं वो अभी भी डले हैं, और मैं उनको ला करके बेच दूंगी, अब आप चिंता नहीं कर। और केस लॉन्च ला के रखे, और वो देवी थी तो उसने अपनी विक्रिया से सब रत्नों के ढेर बना दिए, और जैसे ही वो व्यक्ति आया जिसने पैसे दिए थे और वो पैसे मांगने आया, तो मुनिराज के पास वो रत्न पड़े थे सामने। उसने कहा ये रत्न कहां से पड़े, तो उसे उत्तर मिला कि मुनिराज के केस लॉन्च। तब उसे लगा कि देवी इनकी सेवा करने के लिए हाजिर होती, ये रत्नात्रय के धारी हैं, भीतर से भी सम्राट हैं, समृद्ध हैं, सुखी, और मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि एक तो देव इनकी सेवा कर रहे हैं, जगत इनकी वंदना करता है, और मैं इनसे पैसा वसूली करता हूं। उसे इतना दुख हुआ, उसने गलती की क्षमा मांगी और था अजैन, और वो ही मुनिराज के पास जाकर के दीक्षित हो गया कि प्रभु इस मोह से हमें बचाओ, हम तो समझ रहे थे हम ब्राह्मण हैं, परंतु सचमुच में ये जैन धर्म ही विश्व धर्म है, आत्म धर्म है, इसी में शांति है। देखो मुनिराज बिल्कुल ध्यान नहीं करते जगत का, शरीर का, संयोग का, तो जगत कितना इनकी सेवा में हाजिर रहता। वो रत्न पड़े थे और उस कथा में लिखा आराधना कथा कोश में कि उन रत्नों को छोड़कर, उसने नहीं छुए, उसने भी जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, और जो रत्न पड़े थे उस रत्नों से जैन मंदिर बनाए उस जगह, देवी कोटपुर नाम, अब कहाँ है अपन को तो पता नहीं, तो वो उस समय का मंदिर। तो ये कहते कि यदि तुमने मोह नहीं छोड़ा, कसायों से अपना पिंड नहीं छोड़ा, तो देह तो छूट जाएगी, फिर देह मिली, और फिर जब देह मिली यानी देह की व्याधियां मिली, उपद्रव मिला, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रोग होंगे, जन्म होगा, मरण होगा, शादियां होंगी, विवाह होगा, लेना देना होगा, ग्रहण त्याग होगा, बहुत प्रपंच है। देह यानी व्याधि मंदिर, और आत्मा यानी आनंद मंदिर। तो ये कहते हैं कि इस जीव ने कसायों की संलेखना किए बिना काय संलेखना की, वह सब व्यर्थ गई। काय का क्रस्पना तो रोगी के भी होता, दरिद्री के भी, पराधीनता से मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। देह को क्रस करने के साथ ही साथ राग देश मोहादि को क्रस करके इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके देह के मरण में कुटुंब परिग्रह आदि समस्त परद्रव्यों से ममता छोड़कर परम वीतरागता से संयम सहित मरण करना, उसका नाम है कसाय सन। यानी देखो, ईमानदारी से देह छोड़ो, ये कह रहे। और जब बुढ़ापा आएगा तब नहीं छोड़ना है, प्रति समय इसका अभ्यास करोगे तो फिर बुढ़ापा में छूटते हुए दिखेगा। अपन सोचते तो मरण की बात तो वृद्ध लोगों के लिए, ये कह रहे हैं कि वृद्ध लोगों के लिए नहीं है, जिन्हें देह मिली है उनके लिए। ये तो किसी को भी प्रसंग बनेगा, छोटा बच्चा नहीं मर सकता, उसके भी देह छूटे। बूढ़ा बैठा रहता है, छोटा चला जाता। ऐसी प्रेरणा दी है। यहां ऐसा विषय जानना, जो विषय कसायों को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता। यानी जो राग देश मोह होता है, ये जो भोगी जीव होता है उसी के ही रोग होते। जिसे विषयों में सुख दिखता है उसे बहुत गहरी ममता होती, देह से, संयोगों से, और फिर छोड़ना बहुत कठिन होता है संयोग। और छूटता है परंतु आकुलित होकर छूटता है और गति बिगड़ जाती। संसारी जीवों की ये विषय कसाय बड़े प्रबल है। बड़े बड़े समाधि सामर्थ्यधारियों द्वारा नहीं जीते जाते। इन्होंने बड़े प्रबल बल के धारक चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि को भ्रष्ट करके अपने अधीन बना लिया है, इसलिए ये बहुत प्रबल है। कौन कौन मोह कसाय, ये बड़ों बड़ों से नहीं जीती जाती। देह तो छोड़ना ही पड़ेगा, पर बिना मोह के छोड़ा, मोह ने जीता, तो फिर ऐसी देह के परिवहन मिलेंगे कि अपन को बहुत कष्ट से परिवहन में समय बिताना पड़ेगा। एक सीता के ब्याह मोह में रावण की, लक्ष्मण की कितने भाव लड़ाई चले। एक सीता का ब्याह मोह, एक पारसनाथ के विरोध में नौनों भाव कमठ को दुर्गति में जाना पड़ा। जब भी वो अजगर, भील, कुछ भी बनता था और पारसनाथ के जीव को मार डालता था, मुनि दशा में भी खा जाता था अजगर बन के, बंदर हुआ, हाथी हुआ, ये सब पर यहाँ बीच में सर्प बना आई। और वो जब भी ये कसाय से पारसनाथ के जीव पर प्रहार करता था तो वो शांति से देह छोड़ते थे तो स्वर्ग जाते थे, और ये कसाय से देह छोड़ता था तो उतना काल नरक जाता, और दोनों का काल सिमिलर रहता था। आश्चर्य थे कि यदि द्रौपदी ने मुनिराज को कड़वी लौकी खिलाई और वो इनके तीन और दो, पांच व्यक्ति थे इस परिवार में, तीन पुरुष और दो पत्नियां, एक ही छठवीं वह डिस्टर्ब हुई कड़वी लौकी खिला के, इस पांच में नरक 17 सागर की आयु के लिए, और इतना लंबा काल वहां बीतेगा। बताना ये कि वो तीन व्यक्ति जिन्होंने मुनि पद धारण किया वो अच्युत स्वर्ग में देव हुई। इनकी दोनों की धर्म पत्नियां वो नकुल सहदेव के जीवन है, और ये अकेली जो द्रौपदी है ये 17 सागर नरक में रही, 5 सागर तक तरस पर्याय में भटकी और बाद में उनसे फिर मिली, फिर स्त्री की पर्याय में। हमें ये कहना कि इन परिणामों का कैसा चक्कर है, कैसा फल आता है, और ये मुंह नहीं छोड़ता है। जैसा घर में वो सब उदासीन रहेगा, अब धंधे ही नहीं चल रहा, अब शरीर ही साथ नहीं दे रहा, अब कोई आता ही नहीं, पूछते ही नहीं, जी इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा है? कोई नहीं पूछता तो उनके प्रणाम, कोई नहीं पूछता है ना तो ये उनकी योग्यता है, तुम्हारा इसमें क्या बिगड़ता? अब अपन को कोई नहीं पूछेगा तो अपना क्या होगा? कि सिद्ध बन जाओगे और क्या होगा? कोई नहीं पूछेगा तो क्या नुकसान? अपने घर में रहो, आत्मा समझो, मुंह का भाव करो, भगवान बन जा। ये कसाएं ऐसी शांत नहीं बैठी। जय थी, 50 बच्चियां थी और उसमें से जन्मदिन में 49 बच्चियां गई और एक लड़की नहीं है उसकी सहेली, अब वो बड़े घर की थी तो इसके 49 बच्चियों के आने की खुशी नहीं, एक भी क्यों नहीं आई? बड़प्पन बताने वाली धन्ना सेठन, मैं भी देख लूंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी उसमें, और उसका जन्मदिन आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा बहुत क्षोभ को प्राप्त हो रही थी ये माहौल एक तरफ, उसकी सोच से उसकी आकुलता एक तरफ। अब इतने में एक लड़की आई और उसने कहा कि दीदी आपकी जो सहेली है ना उसके पिता को रात में 2 बजे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो अस्पताल में डली। अब बताओ ये क्या क्या कल्पनाएं कर रही थी बैठी, अब देखूंगी, अब उसके जन्मदिन में मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी बताऊंगी कि मैं भी बड़ा आदमी हूं। अब तुम्हारी सोच कहाँ चली गई? तो ये कह रहे काय को मोह करते, थोड़ी शांति से बैठना तो सीख। अपन कितनी सोच बनाते इनके कारण ऐसा हो गया इसके कारण, कुछ दम ही नहीं है इसमें। अपन ही उदय लाके यहाँ खड़ा कर देता है और घटना घटती है तो अपन को ऐसा लगता है इनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर। ये कसाय संलेखना में ये कसाय की निवृत्ति के लिए कह रहे, थोड़ी ताकत लगाओ इसमें, शांति से जीवन जीना चाहिए। घर में रहो तो दिन भर ऐसे रहो जैसे तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया, इतने प्रसन्न रहो। कोई पूछेगा क्यों कि आज तो बहुत चेहरा खिला है, कि कुछ मिल गया कि नहीं? कि हाँ हमें आत्मज्ञान हो गया। तो हो गया क्या? कि नहीं हो तो अभी कहो कि आत्मज्ञान हो गया, क्योंकि आत्मा तो हो ही और ज्ञान तो तुम्हें हो ही रहा, इसलिए क्या कहो कि हमें तो आत्मा का ज्ञान हो गया है। ऐसा प्रसन्न रहना सीखना चाहिए, जीव बहुत दुखी रहता है और इसके दुख कोई नहीं मिटा सकता, इसने खुद बनाए। इनकी करुणा देखो, ये कहते भैया जहां रहो तुम ऐसे प्रसन्न रहो, देख के तुम्हें दुनिया वो भी प्रसन्न हो जाए। एक लड़की लड़के को सांवली बहू मिली, मतलब देखी उसने और सांवली थी लड़की, उसने कहा ठीक, एक ही बार में उसने बुक करा दी कि ठीक हमें पसंद। तो उसके दूसरे भाई बोले चलिए जी सांवली है और पढ़ी लिखी क्या है? कि ज्यादा पढ़ी भी नहीं और तुमने हाँ पाड़ दी। चले भैया सांवली है तो इसके ऊपर लोग परेशानी नहीं करेंगे, एक तो ये काम बन गया हो, और दूसरा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो इस सिंगापुर जाने की नहीं कहेंगे, शांति से रहेंगे घर में। और ज्यादा पढ़ी लिखी आई कार लेके आएगी तो अपनी सरकार चलाएगी। और हमें शांति से रहना है? नहीं, हम उदाहरण काय के लिए दे रहे हैं कि संता से रहना सीखना चाहिए। घाटा लगे तो प्रसन्न हो कि अच्छा हुआ इतना उदय आया, कर्ज टल गया, और प्रॉफिट हो तो ऐसा सोचो अच्छे काम में लगाए। यदि प्रकृति ने दिया है तो क्या काम कर, मट्टी है, बहुधन बुरा हूं भला कहिए कब, लीन पर कार किसी के काम में आ जाएगा दे देंगे। अब ये FD करा रहा और जो कहते हम एक पैसा नहीं देंगे, चंदा हुआ और हम खस के, तो उसका यही पर साफ होगा। वो संरक्षक है पैसे का, जड़ का, और सब छोड़ के जाएगा किसको, जो मंदिर नहीं आती उसको। तो खसाए गलाओ मुए गलाओ। एक दो घटना और सुना दे, सुकोसल और सुकमाल की प्रसिद्ध है अपने। अब इनकी सुकोसल की माँ ये मुए में तड़प तड़प के मरी, मेरा बेटा क्यों दीक्षित हुआ और कैसे दीक्षित हुआ, यानी इनके पिता जो कीर्तिधर मुनिराज थे और ये सतखंडा महल पे बैठे, इनकी धाय माता बैठी और इनकी सगी मम्मी बैठी, जैसे बैठे थे सब, और देखा इनने कि एक दिगंबर मुनि आ रहे हैं और बहुत सुंदर थे, बड़े राजघराने के राजा महाराजा, तो बहुत सुंदर थे। तो इस लड़के ने पूछा सुकोसल ने कि मम्मी ये कौन आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा, भिखारी आ रहा, भिखारी आ रहा। मम्मी भिखारी तो नहीं लगती, तो बहुत सुंदर लग रहे। ये धक्का क्यों मार रहा वो कर्मचारी, नगर में क्यों नहीं प्रवेश करने दे रहा, ये अच्छा आदमी नहीं इसलिए निकाल रहा। अब उसी धाय माता को तो रोना आ गया कि जिस मालिक का हमने खाया है और उस मालिक को आज धक्का दे के निकाला जा रहा है, ऐसा लगा जैसे कोई ने फाड़ दिया हो, मार डाला हो। रोने लगी जोर जोर से। तो सुकोसर बोला कि आपको क्या हो गया, कि बेटा मम्मी से जो निकल गया मुंह से ऐसा कभी नहीं बोले भगवान किसी को, ये तुम्हारे पिता हैं, इस नगर के मालिक हैं, राजा हैं, और आज मम्मी ने ऐसा कह दिया कि भिखारी हमें सुना नहीं गया, कि एक मुनि दशा पवित्र, तेरा पिता है इसलिए पूजे और मेरे मालिक हैं इसलिए पूजे, हम कैसे सुने कि ये भिखारी। अरे तो मैं जाऊंगा, मेरे पिताजी मुनि क्यों हुए मैं पता लगाऊंगा और मैं भी ये कला सीखूंगा, कैसी समता उन्हें कहां से आई है। और गए मुनिराज के पास और महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमें भी आपका आशीर्वाद चाहिए, ये जिनेश्वरी दीक्षा चाहिए, जब हमें संसार अच्छा नहीं लगता, मम्मी का मोह इतना बड़ा कि मुनि का पद भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसा अंधा मोह। तो उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और चले गए। अब ये तड़पती तड़पती रोई, हमें मोह का फल बताना इसका निषेध किया, जिस ये तड़प तड़प के रोती रोती मरी और व्याघ्री हुई, और व्याघ्री हुई और इसने अपने सुकोसल बेटा के ऊपर पंजा मार के उसे फाड़ के खा। समझ में आया, मुंह बदलती देरने लगी और वो राग कन्वर्ट होके इस रूप में उदय में आया। आज पहले कैसा था कि बेटा कहाँ चला गया उसके बिना मैं कैसे रहूं, अब वो राग उसको उसी को खाने में कारण बने। अपन को ऐसा लगता है कि अपने घर में अपन एक सब दूसरे से मिलके रह रहे हैं, अभी ये दिखता है थोड़ी देर के लिए, आप ही के ये परिवार के एक दूसरे के काट छांट में लगेंगे, जेर बनेंगे, द्वेष खड़ी करेंगे, शत्रु बन जाए, बहुत विकट संसार है, अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो उसने सुकोसल मुनि को खा लिया और उस सरवार सिद्धि सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। अब जैसे ही वो दोण के कीर्तिधर मुनिराज के शरीर को चीरने के लिए आई तो उनको यहाँ का चिन्ह देखा, पति थे पहचानते थे, यानी अजाति स्मरण हो गया, खरी तो मेरी पति और ये मेरा बेटा था, मैंने क्या कर लिया। अब खड़े हो गए एकदम से, हाथ रुक गए और आंख से आंसू की धारा बहने लगी। तब कीर्तिधर मुनिराज ने बताया पापनी तूने क्या किया, जिसके लिए रो रही थी उसी को खा गई, तुझे दया नहीं आई, तूने अपनी गति बिगाड़ ली। अब उसी सिंहनी को समझाया, जैनी बनाया और उसका उपदेश मुनिराज का उन्हें पसंद आया और वो मर करके स्वर्ग में देवी हुई। सोचो जरा ये जैन धर्म का हृदय है कि अपन सोचते इतना बड़ा पापी इसे क्या धर्म सिखाए। वो कह रहे कि साक्षात मुनि को खा गई और फिर भी मुनिराज उसे संबोध रहे कि वो पर्याय चली गई, मुंह घटाओ, ऐसा नहीं है कि वो मुंह हो गया तो हो जाने, अभी अभ्यास करो छूट जाएगा मुंह छोड़ करके चली गई। देखो दो लाइनें पढ़ दे फिर समाप्त कर। संसार में जितने भी दुख हैं वे सभी विषयों के लंपटी अभिमानी लोभी व्यक्तियों को होते, कितने ही जीव जिन दीक्षा धारण करके भी विषयों की याताप से भ्रष्ट हो जाते हैं, अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते हैं, अनादि काल से विषयों की लालसा से लिप्त व कसायों से प्रज्वलित संसारी जीव अपने को भूलकर स्वरूप भ्रष्ट हो रहे। देखो 608 जीव प्रति 6 महीने 8 समय में भगवान बन रहे हैं और अनंतों जीव ऐसे जन्म मरण कर रहे हैं। सब जीव स्वतंत्र हैं, कोई किसी के सिखाने से नहीं सीखता, अपनी योग्यता से मान, तो भी इनकी ये करुणा रहती है। देखो ये जो तंदुल मच्छ था है ना, ये बैठा बैठा पाप कमा के सातवें नरक में पहुंचे। शेर और सूकर दोनों लड़े, एक के मुनि रक्षा के भाव और एक को मुनि खाने के भाव, और दोनों लड़े और दोनों की एक सी लड़ाई होने पर एक स्वर्ग गया और एक नरक गया। तो जब दोनों लड़े तो एक स्वर्ग क्यों गया? अरविंद भाई, बचाने का भाव था। तो क्रिया से बंद होता है कि परिणाम से बंद? परिणाम से बंद। तो अपने परिणाम कैसे रखना चाहिए? वस्तु परक रखना चाहिए। कब रहेंगे वस्तु के अनुसार? जब आप अपने को आत्मा मानोगे तब। वस्तु स्वरूप समझोगे तो आपको ज्ञातापना आएगा, मोह घटेगा, दुकान ऐसी लगेगी जैसे कोई चपरासी गिरी है। जैसे मुनीम बन के, मुनीम आता ना, मुनीम काम करने वाला बैठता है, ऐसे ही आप दुकान में बैठने की आदत डाल। अपन भी साक्षी हैं, देखो इसमें आएगा जाएगा, हमारा तो कुछ है। इस तरह से उदासीन रहे तो एक दिन देह और संयोग छूटेंगे तो गति नहीं बिगड़ेगी, परिणाम नहीं। और यदि एकत्व गहरा रहा तो धंधा पानी तो छूटेगा पर इस शरीर छूटने के साथ इस जीव की गति भी बिगड़ जाए। अपन ने देखे हैं कि रामचंद्र जरा से मुंह में 6-6 महीने पागल रहे, श्री कृष्ण पागल जैसे घूमते थे बलभद्र के मुंह में, 6 महीने लटकाए रहे श्री कृष्ण को बलभद्र। इस संसार की ऐसी विषमता है, विचित्रता है, अपनी चित्त में कैसे आदर आए, तत्व ज्ञान में कैसे अपनी बुद्धि लगे। मंदिरों में आए तो स्वाध्याय की आदत विशेष डालना चाहिए, और स्वाध्याय भी स्वभाव के लक्ष्य से करना चाहिए, और स्वभाव का लक्ष्य भी कि मैं जीव हूँ, इसकी कथा इसमें लिखी, मेरे हित की चर्चा इसमें लिखी है, इसे पढ़ना। तो कोई भी कठिन से कठिन ग्रंथ होगा, जब आप ये मन बनाओगे कि इसमें मेरी बात लिखी, तो फिर मन लग जाता है। जैसे एल्बम में अपना मन कौन से चित्र में लगता है, हजारों फोटोएं एल्बम में, तो कौन सा पेज अच्छा लगता है जिसमें अपनी फोटो, क्यों लगता है अच्छा? अपनी है ना, और दूसरों की फोटो अच्छी नहीं। तो ये जो शरीर है ना, ये दूसरे का शरीर है, और ये छूटे तो अच्छा, कुछ अपना बिगाड़ नहीं करेगा, और इसे अपना मानना नहीं छोड़ा तो नियम से बिगाड़, तो वो बिगाड़ ना हो। एक भजन कह के समाप्त करेंगे, कल से अपनी विदाई समारोह है। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापिस आता है, क्या तूने खोया है, क्या तूने पाया है, कर ले तू चिंतन सही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली, मोह लोभ में तू बरमाया है, सपनों का संसार सजाया है, ये सब छलावा है, ये सब भुलावा है, कर ले तू चिंतन सही, क्योंकि कितने गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी, जिसको तूने अपना माना है, बोलो जरा, जिसको तूने अपना माना है, यह पराई क्या नहीं जाना है, कोई नहीं तेरा है, छाया अंधेरा है, अंतर को कर ले रोशन, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत। हम दूसरी लाइन क्यों नहीं बोल रहे कि फिर भी देखो पर्याय मेरे, वो नहीं बोलना अपन को, क्योंकि आप थोड़ी बोलना। दीव शास्त्र गुरु शरण मिली तुझको, बोलो जिन वाणी की राह मिली मुझको, अब बिना समलागर मोकाए चूकागर, भवों में पछता येगा क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा। अब सैद्धांतिक चर्चा आ रही, अभी प्रेरणा वाली थी। जग में नाना जीव विचरते हैं, कितने जीव हैं? नाना जीव हैं, अनंत। अपनी अपनी मर्जी जीते हैं, जिसने जैसे कर्म कमाए हैं, करनी का फल वैसा पाए हैं। जो भी संसारी है, भ्रम की बीमारी है, भूले भगवान है सभी, कौन है? भूले भगवान है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। अपन को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति पापी है, अज्ञानी है, मांस खाता है, ये क्या भगवान बनेगा? मृगध्वज की कथा आई कि राजा ने, मृगध्वज नाम का लड़का था और उसको मांस खाने की आदत थी। ऐसे कोई कल्पना करेगा राजा का लड़का, जैन धर्म को पालने वाला परिवार, पर उसकी ऐसी कुटिल थी कि उसे किसी भी हालत में मांस चाहिए। और एक भैंस का पड़ा, भैंसा का पड़ा, और उसे 6 बार उस भैंस से जन्म मिल चुका था। जब 7वीं बार उसे जन्म मिला तो उसे जाति स्मरण में पता चल गया कि ये जो सेठ है और ये जो ग्वाला है, मुझे कसाई खाने को बेच देता है, कसाई को बेच देता है और मेरे प्राण निकल जाते। मैं 9 महीने गर्भ का दुख सह के आता, यहाँ ये बराबर दूध नहीं देता डेयरी वाले, और मैं भूखा प्यासा रहता हूँ, ये दर्द तो एक तरफ और इन्हें कोई प्रयोजन नहीं सकता, तो ये कसाई को बेच दे। तो ऐसा वो क्या करता था, वो मृग, वो भैंसा कपड़ा उसके पैर पर गिरता था, कौन? ग्वाला के पैर पर, और जब वो सेठ आता था तो उसके पैर पर। तो एक बार दिगंबर मुनि अवध ज्ञानी आए और उनसे पूछा कि महाराज जी ऐसी चेष्टाएं क्यों करता? कि भैया इस भैंस का 7वें नंबर पर ही जानवर हो रहा, 6 बार का इसे अभी होश आया कि मैं मर चुका हूं, और अब ये मार डालेंगे, उसे कांपता है शरीर। इतना जीव ऐसा हल्का हो गया, ये जरा सी प्रणाम मोह में ऐसी जान ले लेता। तो ये राजा को पता चला उस नगर में, और राजा ने उसका नाम, मतलब भैंसे के पड़े को, अपने महल के पास बांधा कि इसका कोई भी कुछ आहित नहीं करना, ये मेरे निर्देशन में इसकी रक्षा हो। और जो राजा का लड़का मृगध्वज था, उसी को इसी भैंस के पड़े के पैर के मांस खाने की इच्छा हुई, और इसने कसाई से कहा इसका पैर काट लो, और पैर काट के कसाई ले गया, मांस खिलाया, और वो पड़ा लड़खड़ाता हुआ, कराहता हुआ, जैसे राजा महल से बाहर निकला तो उनके चरणों में फिर गिर पड़ा, जैसे पहले उनके पास गिरता था। तो राजा ने उसे नमोकार मन सुनाया और उसकी समाधि हुई, देव की पर्याय मिली। परंतु जैसे ही राजा को पता चला कि मेरे बेटे ने और इसके 2 मित्रों ने इसके पैर का मांस खाया, तीनों को फांसी चढ़ा दो। तो मंत्री को पता चला कि ये फांसी का काम हमें करना, तो उसने कहा कि बेटा तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तो जैन धर्म ही शरण है, तुम एक काम कर सकते, यदि आज बचना है तुम किसी मुनिराज की शरण में जाओ, जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर लो, तो फिर राजा भी कुछ नहीं करे। तो वो तीनों गए, मरता क्या नहीं करता, और इसी बहाने से धर्म होने लगा। वो गए मुनिराज से कहा, महाराज ये सब पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरा भी कल्याण हो सकता है क्या? मेरी आदत बन गई है मांस खाने की, मेरी कुटेव नहीं छूटी, अब मेरा हृदय बदल रहा। तो मुनिराज ने कहा, बेटा घबराना नहीं, और तुम इसी भाव में भगवान बनोगे। जो रोज मांस खाता था, कभी कल्पना भी नहीं हो सकती थी किसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति भी भगवान बन सकता। और मुनिराज अवध ज्ञानी थे, उनने जिनेश्वरी दीक्षा भी दी और वो तपश्चरण भी किया, और मृग ध्वज मांसाहारी जो पूर्व में था उसी भाव से केवल ज्ञानी बना। ऐसी कथाएं आराधना कुश में आती। कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा, अंजन जैसे हुए निरंजन रे, किसका गौरव कब जग जाएगा। सबको भगवान जानो, अपने जैसा मानो, किसके जैसा, सिद्धों जैसा मानो, अशरीरी प्रभु हैं सभी, क्योंकि तुम्हारनंत गुणों का धनी। इसमें क्या शिक्षा मिली कि किसी व्यक्ति के बारे में आप कल्पना नहीं करो कि ये बहुत पापी दिखता है, इसका कल्याण कैसे। अभी एक मृगध्वज की कथा बताई, इसमें किसी को भी आप देखना। श्रीमद जी का कल्प चिंतन है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को पीट रहा था और उनको ऐसा ज्ञान था कि उन्होंने कहा कि तुझसे पहले मोक्ष जाने वाली और तू इसे पीटता, तो ये जीव कब सिद्ध दशा को पा जाएगा। आप किसी का तिरस्कार नहीं करो, सब पर समता भाव रखो। अनहोनी क्या कभी भी होती है, होनी भी तो कभी न टलती है, काल लब्धि जिसकी आ जाती है, बात समझ में तब ही आती है। अपन डांटते हैं, मारते, छोटे छोटे बच्चों को सताते रहते, अरे भी वो ज्ञान का विकास अपनी योग्यता प्रमाण होगा, और ये जीव समझता है कि हम कूट कूट के मार मार के इसे मुसलमान बना, अपनी योग्यता से ज्ञान आएगा, जबरदस्ती परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसको समझाना है, किसको जगाना है, छोड़ो ये ममता अभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी, समझाने से समझ नहीं आता। तो काय को समझा रहे हो, समझा नहीं रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि हमारे समझाने से तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें अपनी समझ से समझ में आ रहा। जब समझी तब स्वयं समझ जाता, जिन वाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदि सर समझाया, मारी ची बोराया, क्यों माने किसी की कोई, क्योंकि अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का। बनारसी दास जी ने लिखा परमार्थ वचन का, कि हमने तुझे जिनेन्द्र देव की देशना समझाई, तू माने तो शाबाश और नहीं माने तो तेरी होनार तेरी पास, हम तो अपने शांति भंग नहीं करें। ये सब तटस्थ साक्षी व्यक्ति होना चाहिए। नई उपदेश सुनने आते नहीं आते, सबके अपने अपने काम है, अपने अपनी योग्यता है, अपने अपने परिणमन है। इस समय उसे ज्ञान कहेगी नहीं बन रहा, नहीं आ पा रहा, आप परिणाम नहीं बिगाड़ो किसी प्रकार से। कितनी ताकत होती है एक स्वाध्याय में समझ वाले जी। ठीक सिद्धांत ये समझाए कि अपनी समझाने से समझ में आ जाता तो फिर वो शिक्षक के सब विद्यार्थी पास होना चाहिए, परंतु 5 फेल हो गए और 45 पास हो गए। तो महावीर भाई वो 5 फेल किसकी कृपा से हुए है? शिक्षक की कृपा से है। किसकी कृपा से? 45 पास भी अपनी योग्यता से हुए और 5 फेल मास्टर की कृपा से नहीं। साधर्मी से भी न बहस करना और विधर्मी संग भी चुप रहना, बुद्धू बन कर जो रह जाओगे बहुत विवादों से बच जाओगे। जीवन 2 दिन का है, मौका निज हित का है, आवे ना आओ सर यों ही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का। अंतिम में हमको तो निज रूप ने रखना है, अनुभव कर भव सागर तिरना है, मुक्ति की ये रीत पुरानी है, केवलियों ने अनुभव से प्रमाणी है। निज के अवलंबन से सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत है मार्ग यही, क्योंकि नंति गुणों का धनी आत्मा अनंति गुणों का धनी। 6-7 दिन के बीच में जो अपन सब चर्चा में बैठी, किसी का हृदय दुखी हुआ हो, भाषा से व्यंग लगा हो, तो उससे क्षमा प्रार्थना करते हैं और पंच परमेष्ठियों को बारंबार नमस्कार करते हैं कि जैन शासन को प्रभाव।